यशाया अध्याय 62। अध्याय 62 में परमेश्वर इसराइल के पुनरुद्धार के विषय में कहता है। यशाया अध्याय 62 पद 1। सियोन यरूशलेम के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन ना लूंगा जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश की नाई और उसका उद्धार जलते हुए पलीते के समान दिखाई ना दे। परमेश्वर ने कहा, जब तक मैं पूरा ना कर लूं शांत नहीं बैठूंगा। यशाया अध्याय 62 पद 2 से लेकर 4 तक। तब अन्य जातियां तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभ्यमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी। निस्संदेह यहूदियों को लगा कि वे त्याग दिए गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने नरसंहार से बचे हुए यहूदियों का एक और स्मरणोत्सव मनाया था। यदि आप इसराइलियों या उन यहूदियों से जो इस विध्वंस से बचे थे पूछें, तो उनका प्रायः एक ही प्रश्न होता है। जब हमारे माता पिता और रिश्तेदार जर्मनियों के द्वारा जलाए जा रहे थे, तब परमेश्वर कहां था? परमेश्वर कहां था? परमेश्वर कहां था? ये एक सामान्य प्रश्न है जो वो अधिकांश पूछते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। परंतु परमेश्वर कहता है, तू फिर त्यागी हुई ना कहलाएगी। यशाया अध्याय 62 पद 4। और तेरी भूमि फिर से उजड़ी हुई ना कहलाएगी, परंतु तू हेप्सिबा। इसका अर्थ है, परमेश्वर तुझसे प्रसन्न है। यशाया अध्याय 62 पद 4 में आगे लिखा है, और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। इसका अर्थ है विवाहित। यशाया अध्याय 62 पद 5। क्योंकि जिस प्रकार एक जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लेता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे। और जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। जिस प्रकार एक वर अपनी वधु से आनंदित होता है, उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा इसराइल के लिए ये बहुत ही उत्तम उपमा देता है। नए नियम में मसीह और कलीसिया के मध्य भी ऐसा ही प्रेम है। पौलुस भी एफिसियों को लिखता है, पति अपनी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखें जैसा मसीह कलीसिया से रखता है, और पत्नियां अपने अपने पति के अधीन वैसे ही रहे जैसे वे प्रभु के अधीन रहती है। पौलुस ने कहा, अब मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं, मैं मसीह और उसकी कलीसिया के बारे में बताता हूं कि मसीह से ये सुहावना और घनिष्ठ संबंध हमें किस प्रकार प्राप्त है, जैसा दुल्हे और दुल्हन के मध्य प्रेम आदि। ये वास्तव में इसराइल और परमेश्वर के मध्य संबंध की उपमा है। पिता परमेश्वर और इसराइल संबंध पुराने नियम में तथा यीशु और कलीसिया का संबंध नए नियम में। यशाया अध्याय 62 पद 6। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पना पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। दूसरे शब्दों में विनती करने वालों को पुकार। यशाया अध्याय 62 पद 7। और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जब तक इसराइल परमेश्वर महिमामय प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक प्रार्थना करते रहो, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 122 पद 6। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। अतः हमें लगातार प्रार्थना वरन मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तब तक उसे भी चैन न लेने दो, प्रार्थना से संबंधित रोचक वाक्य है। आपको ध्यान होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण दिया था कि एक गरीब विधवा न्यायाधीश को प्रतिदिन परेशान करती थी कि उसके बैरियों का न्याय किया जाए। यीशु ने कहा कि उस न्यायाधीश की क्या मनोदशा थी, मैं ना तो परमेश्वर का भय मानता हूं और ना ही मनुष्य का, परंतु ये स्त्री मुझे रोज परेशान करती है। इस प्रकार उसने उसके पक्ष में न्याय दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण इसलिए दिया था कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। मुझे ये समझने और अंत ग्रहण करने में कठिनाई होती है। मेरी परेशानी उस अन्यायी न्यायाधीश से है जिसका चयन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उदाहरण के लिए किया है। वो स्वयं कहता है, मैं परमेश्वर का भय नहीं मानता हूं, और ये इस स्त्री की दृढ़ता है, परंतु ये एक उदाहरण है। यहां यीशु के कहने का अर्थ ये था कि एक अन्यायी व्यक्ति जब किसी के प्रति मन में दया ला सकता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो न्याय स्वयं है, क्यों कर अपनी संतान की निरंतर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। अतः यहां यीशु उस न्यायाधीश की तुलना परमेश्वर से नहीं कर रहा है। वो ये बताना चाहता है कि जब एक अधर्मी व्यक्ति निरंतर याचना से प्रभावित किया जा सकता है, तो एक न्यायी धर्मी पिता क्यों नहीं प्रभावित होगा। अतः ये तुलना नहीं परंतु एक विपरीत उदाहरण है। एक अनजान स्त्री का पक्ष एक अधर्मी न्यायी कर सकता है, तो एक धर्मी न्यायी पिता अपनी संतान का पक्ष क्यों नहीं लेगा। अतः जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने दो। यशाया अध्याय 62 पद 8। यहोवा ने अपने दैने हाथ की ओर अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है, निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाखमधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। इसराइल के साथ ये एक निरंतर होने वाली ऐतिहासिक घटना थी। जब जब उनके बैरियों ने उन पर आक्रमण किया, उन्होंने उनकी फसल उठा ली। आपको ध्यान होगा कि गिदोन अपनी फसल दाकरस के कुंड में जाड़ रहा था कि मिद्यानी उसे देख ना ले। जो ही वे अपने गेहूं का फसल काटते थे, त्यों ही वे आकर उन्हें लूट लेते थे। कहने का अर्थ ये है कि उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता था। वे खेती करते, कलिहान बनाते और उनके बैरी आकर उन्हें लूट लेते। परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि अब ऐसा नहीं होगा। यशाया अध्याय 62 पद 9 से लेकर 12 तक। केवल वे ही जिन्होंने उसे खाते में रखा हो, उसे खाकर यहोवा की स्तुति करेंगे, और जिन्होंने दाखमधु भंडारों में रखा हो, वे ही उसे मेरे पवित्र स्थान के आंगनों में पीने पाएगा। जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो, यहोवा ने पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। यह है परमेश्वर द्वारा अपनी प्रजा का पुनरुद्धार।